एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
जीवन मेरा है नहीं कुछ भी तेरे बिना मसीहा। जीवन मेरा है नहीं कुछ भी तेरे बिना मसीहा। तू ही मेरा और मैं तेरा, आके मुझको ले ले तू। तू ही मेरा और मैं तेरा, आके मुझको ले ले तू। जीवन मेरा है नहीं कुछ भी तेरे बिना मसीहा, मसीहा, मसीहा। मेरा ये जीवन मेरा ये तन मन तूने सृष्टि की प्रभु जी, मेरा ये जीवन मेरा ये तन मन तूने सृष्टि की प्रभु जी, कुछ न रख लूं तुझी को दे दूं वर दे ऐसा है मसीह, कुछ न रख लूं तुझी को दे दूं वर दे ऐसा है मसीह, जीवन मेरा है नहीं कुछ भी तेरे बिना मसीहा मसीहा मसीहा।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके सामने आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उसे प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे वचनों से सीखना चाहते हैं पिता। हमारे मनों को खोल दे, विशेषकर मेरे श्रोताओं के संग हो, उन्हें समझने के लिए मदद कर, तेरा पवित्र आत्मा से अगुवाई कर पिता, ताकि तेरा वचन को सुन करके समझ करके तेरे रास्ता में चलने सके। और मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे, ताकि मैं तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा से तेरा वचन को अच्छी तरह से बतला सकूं। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। आज का हमारा अध्ययन का शीर्षक है जीवन के लिए योजना। जब एक मसीह सेवक ने मैं यीशु में क्यों भरोसा करता हूँ विषय पर अपना भाषण पूरा किया, तो उसके बाद एक सलीकेदार कपड़े पहने युवा ने उसे अध्ययन कक्ष में मुलाकात की और कहा, आपकी आज की चर्चा दिलचस्प थी, लेकिन आपने जो भी यीशु के बारे कहा वो सब बाइबल से था। मुझे बताइए, अगर यीशु कभी सच में इस धरती पर आए थे तो इतिहास उनके बारे में कुछ क्यों नहीं बताता? अच्छा सवाल है, मसीह सेवक ने कुछ किताबें निकालने के लिए मुड़ते हुए जवाब दिया। लेकिन हकीकत यह है कि इतिहास यीशु मसीह के बारे में बतलाता है। वो मैं खुद से देखना चाहता हूँ, युवा ने उत्तर दिया। तो इधर देखो, ये है प्लिनी द यंगर की चिट्ठियों की किताब 10 का पत्र 97। प्लिनी ओल्ड एशिया माइनर के एक प्रांत बिथिनिया के रोमन प्रशासक थे। प्लिनी ने रोमन सम्राट ट्राजन को अपने प्रांत में होने वाली घटनाओं के बारे में काफी कुछ लिखा है। देखो, यहाँ वह परामर्श दाता से पूछ रहा है कि उसे नए पंथ ईसाइयों को कैसे संभालना चाहिए। वह उन्हें उनकी तेजी से बढ़ती संख्या और वे कैसे अपने नेतृत्वकर्ता मसीह के लिए भजन गाते हैं के बारे में बतलाता है। प्लिनी ने अपना पत्र लगभग 110 ईस्वी में लिखा था। प्लिनी की यह चिट्ठी मसीह के होने और उनके धार्मिक विश्वास के प्रसार का ऐतिहासिक प्रमाण है। चकित होकर युवा ने पूछा, मुझे और बताइए। मसीह सेवक ने दूसरी किताब के पन्ने पलटते हुए कहा, प्लिनी का एक समकालीन इतिहासकार था टेसिटस। उसने अपने वर्षक्रम में लिखे इतिहास पुस्तक 15 अध्याय 44 में रोम के जलने के समय नीरो की ईसाइयों के प्रति घृणा और उन पर उत्पीड़न के बारे में कहा है। टेसिटस समझता है कि क्रिश्चियन शब्द क्राइस्ट नाम से आया है। उसने उल्लेख किया है कि ईसाई क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक यीशु मसीह को सम्राट तिबेरियस के शासनकाल में यहूदिया के प्रोक्यूरेटर पोंटियस पिलातुस द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। टेसिटस द्वारा दिए गए ये विवरण बाइबल में दी गई घटनाओं, नामों और स्थानों के विवरण से एकदम मेल खाते हैं। पादरी, मुझे इस तरह की चीजों की जानकारी धर्मनिरपेक्ष इतिहास में नहीं मिली, युवा ने कहा। मसीह सेवक ने आगे बताया, मैं तुम्हारा ध्यान इस बात पर दिलाना चाहता हूँ कि 180 ईस्वी के लगभग सेल्सस ने ईसाइयत पर आक्रमण करते हुए एक किताब लिखी थी जो इस बात की ओर इशारा करती है कि उस समय तक ईसाइयत जोर पकड़ चुकी थी। अगर तुम्हें अभी भी संदेह है तो याद रखो, 4 सुसमाचार उतने ही ऐतिहासिक हैं जितनी ये पंथ निरपेक्ष किताबें। जब इस युवा व्यक्ति को महसूस हुआ कि पवित्र और पंथ निरपेक्ष दोनों इतिहास इस बात पर सहमत हैं कि यीशु इस धरती पर एक इंसान के रूप में जिए थे, तो वह इस यकीन के साथ चला गया कि यीशु मसीह एक असली ऐतिहासिक व्यक्तित्व था। मसीह शाश्वत थे। यीशु मात्र एक भले व्यक्ति नहीं थे, वे परमेश्वर भी थे। यीशु ने स्वयं अपनी दिव्यता से जुड़े क्या दावे किए थे, इसे हम यूहन्ना 14 का 7-9 में पढ़ सकते हैं। यहाँ इस तरह कहता है, अगर तुम सच में मुझे जानते तो तुम मेरे परम पिता को भी जान जाओगे। अब से तुम उन्हें जानते हो और तुमने उन्हें देखा है। जिस किसी ने भी मुझे देखा है उसने मेरे पिता को भी देखा है। अगर आप इन सवालों का जवाब पाना चाहते हैं, परमेश्वर कौन है, वो कैसे हैं, बस यीशु की तरफ देखो, जिन्होंने घोषित किया था, मैं और परमपिता एक ही हैं, यूहन्ना 10:30। परमपिता परमेश्वर और पुत्र यीशु शाश्वत काल से अस्तित्व में हैं, इब्रानियों 1:8। ऐसा कभी नहीं था जब यीशु और परमपिता एक नहीं थे। परमपिता हर एक व्यक्ति से वैसा ही प्रेम और स्नेह रखते हैं जैसा यीशु ने धरती पर अपने मानव जीवन के दौरान प्रदर्शित किया था। मसीह इतिहास और भविष्यवाणी का हृदय। क्योंकि मसीह की जीवन कथा एक भविष्यवाणी की परिपूर्ति है, अतः उनकी जीवन कथा उनके जन्म से पहले ही लिखी जा चुकी थी। पुराने नियम की भविष्यवाणियां मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान की स्पष्ट रूप रेखा प्रदान करती है। परिपूर्णता की कहानी नया नियम में है, जिसमें उनके जीवन की कथा है। मसीह के जन्म से 500 से 1500 वर्ष पहले पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने मसीहा के जीवन से संबंधित अनेकानेक विशिष्ट भविष्यवाणियां की थी। मसीह के धरती पर आगमन के शुरुआती समय में लोगों ने उनके जीवन की तुलना पुराने नियम में की गई भविष्यवाणियों से की थी, और उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला। हमें मूसा द्वारा कानून में दी गई एक भविष्यवाणी मिली है और इसके बारे में भविष्यवक्ताओं ने भी लिखा है। नाजरत के यीशु, यूसुफ के पुत्र, इसे हम पाते हैं यूहन्ना 1:45 में। हमारे उद्धारकर्ता ने अपनी पहचान स्थापित करने के लिए उन भविष्यवाणियों के साथ बताए, और मूसा और सभी भविष्यवक्ताओं से शुरू करते हुए उन्होंने समझाया कि सभी धर्म ग्रंथों या पुराने नियम में उनके बारे में क्या कहा गया था। लूका 24 का 25 से 27 में हम इसे पाते हैं। परिपूर्ण भविष्यवाणियां मजबूत साक्ष्य प्रदान करती हैं कि यीशु ही वह मसीहा है जिसका वादा किया गया था। मसीह का जीवन एक भविष्यवाणी की पूर्ति। आइए पुराने नियम ओल्ड टेस्टामेंट में उल्लेखित कुछ भविष्यवाणियों और नया नियम में उनकी पूर्ति पर नजर डालते हैं। उनके जन्म का स्थान, पुराने नियम में दी गई भविष्यवाणी, परंतु तुम बेतलहम इफ्राता, तुम में से एक मेरे पास इज़राइल में शासक बनने के लिए मेरे पास आएगा, जिसके घराने की जड़ें पुरातन से चिरस्थाई से है। इसे हम मीका 5:2 में पाते हैं भविष्यवाणी, और उसका पूर्ति होते हुए हम पाते हैं नए नियम में बताई गई है मत्ती 2:1 में, यीशु यहूदिया के बेतलहम में जन्मे थे, उनका पवित्र कुमारी से जन्म लेना। पुराने नियम में दी गई भविष्यवाणी है, कुमारी के गर्भ में संतान होगी और वह पुत्र को जन्म देगी और वह उसे इमानुएल या परमेश्वर हमारे साथ पुकारेगी। यशायाह का 7:14 में हम इसे पाते हैं, और इसका पूर्ति होते हुए हम देखते हैं नया नियम में, नया नियम में बताई गई है, दाऊद के पुत्र यूसुफ मेरी को अपनी पत्नी के रूप में घर ले जाने से ना डरो, क्योंकि उसके गर्भ में जो है वह पवित्र आत्मा से है, वह एक पुत्र को जन्म देगी और तुम्हें उसे यीशु प्रभु बचाते हैं नाम देना है। इसे हम मत्ती 1:20-23 में पढ़ते हैं। उनकी वंशावली यहूदा के कबीले से, पुराने नियम में दी गई भविष्यवाणी, तब तक ना तो यहूदा से राजदंड टूटेगा जब तक कि वो उनके पास ना आ जाए जिनको वो है, उत्पत्ति 49:10 में हम यह पाते हैं। नए नियम में बताई गई परिपूर्ति, यह स्पष्ट है कि हमारे प्रभु यहूदा से अवतीर्ण हुए थे, इब्रानियों 7:14। उनका अस्वीकरण, पुराने नियम में दी गई भविष्यवाणी, वह मनुष्य द्वारा तिरस्कृत और अस्वीकार किया गया था, यशायाह 53:3। नए नियम में बताई गई परिपूर्ति, वह उनके पास आए जो उनके अपने थे, लेकिन उनके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया, यूहन्ना 1:11। विश्वासघात और गद्दार ने मूल्य अदा किया, पुराने नियम में दी गई भविष्यवाणी, यहाँ तक कि मेरे मित्र ने भी, जिस पर मैंने भरोसा किया था, जिसने बैठकर साथ मेरी रोटी खाई थी, वह भी मेरे विरोध हो गया है, भजन संहिता 41:9। नए नियम में बताई गई परिपूर्ति, फिर 12 में से एक ने पुकारा, यहूदा इस्करियोत मुख्य पुजारी के पास गया और पूछा, आप मुझे क्या देंगे अगर उसे मैं आपको सौंप दूं? इस पर उन्होंने 30 चांदी के सिक्के देने की बात कही, मत्ती 26:14-15। सलीब पर उनकी मृत्यु, पुराने नियम में दी गई भविष्यवाणी है, उन्होंने मेरे हाथ और मेरे पैर बांध दिए हैं, भजन संहिता 22:16। नए नियम में बताई गई परिपूर्ति, जब वे खोपड़ी नाम की जगह पर आए तो वहां उन्होंने उनको सलीब पर टांग दिया, लूका 23:33 और यूहन्ना 20:25 में भी हम देख सकते हैं। कब्र से उनका निकल जाना, पुराने नियम में दी गई भविष्यवाणी यह कहता है, भजन संहिता 16:10 में, क्योंकि तुम मुझे कब्र में नहीं छोड़ोगे, ना ही तुम अपने पवित्र को क्षय होते देखोगे, भजन संहिता 16:10। नए नियम में बताई गई परिपूर्ति, आगे क्या होने वाला है को देखते हुए उन्होंने मसीह के पुनर्स्थान की बात कही, कि उन्हें कब्र में नहीं छोड़ा गया, ना ही उनका शरीर क्षय हुआ। परमेश्वर ने यीशु को जीवित कर दिया और हम सब इस तथ्य के गवाह हैं, प्रेरितों के काम 2:31-32। मजबूत साक्ष्य हैं कि यीशु मात्र कुछ भविष्यवाणियों में ही सही नहीं बैठते, उनकी कहानी वास्तव में पारलौकिक तरीकों से उनके पहले ही लिख दी गई थी। सच में यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। साक्ष्य को देख लेने के बाद हमें प्रार्थना पूर्वक निर्णय लेना होगा कि हमारे जीवन में प्रभु कौन होंगे। अगर आपने अभी तक यह नहीं किया है तो क्या आप अपना जीवन यीशु के हाथों में सौंप देंगे? परमेश्वर द्वारा नियोजित जीवन, यीशु ने परमेश्वर द्वारा नियोजित जीवन जिया जो उनके जन्म से सैकड़ों साल पहले रूपांकित कर दिया गया था। इस तत्व को जहन में रखते हुए वे परमेश्वर की इच्छा के प्रति संवेदनशील रहे। मसीह ने कहा, मैं स्वयं से कुछ नहीं करता बल्कि मात्र वही बोलता हूँ जो पिता ने मुझे सिखाया है। मैं बस वही करता हूँ जो उन्हें प्रसन्न करे। यूहन्ना 8:28-29। परमेश्वर ने यीशु के जन्म से पहले ही उनके मानव जीवन की योजना बना दी थी। प्रत्येक मानव के लिए भी परमेश्वर के पास योजना होती है। वो जानता है कि हम में से प्रत्येक अपनी गहनतम इच्छाओं को कैसे परिपूर्ण कर सकते हैं और प्रफुल्लित जीवन कैसे पा सकते हैं। परमेश्वर कई तरीकों से मार्गदर्शन देता है। पहला, बाइबल। भजनकार के अनुसार जीवन की मार्ग निर्देशिका क्या है? आपका वचन मेरे पैरों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए ज्योति है। भजन संहिता 119:105। परमेश्वर के वचन हमारे मन को तरोताजा कर देते हैं और हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। रोमियो 12:2 और भजन संहिता 119:99। दूसरा, ईश्वरकृत परिस्थितियां। परमेश्वर हमें दैव निर्देशित परिस्थितियों से भी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। भजन संहिता 23 उन्हें एक भले गड़ेरिए की तरह देखता है। एक गड़ेरिया अपनी भेड़ों को सुंदर हरी भरी घाटियों से लेकर चट्टानी कंदर राहों तक हर जगह आगे का मार्ग दिखाता रहता है। तीसरा, परमेश्वर का दिल से सीधा संपर्क व संवाद। परमेश्वर हमारी अंतरात्मा से बात करके हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। पवित्र आत्मा आपके हृदय की आंखों को रोशन कर सकती है। इफिसियों 1:18। हम जितना अधिक नियमित तौर पर परमेश्वर के साथ संवाद करने का अभ्यास करते हैं उतना ही वह हमें मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम होते हैं। वह हमारे आंतरिक विचारों और हमारे तर्क और निर्णय दोनों को ढालते हैं ताकि हम स्पष्ट रूप से अगले चरण को देख सकें। मार्गदर्शिका को तारतम्य में होना चाहिए। यह संभव है बेशक कि आपको लगे कि आप परमेश्वर निर्देशित जीवन जी रहे हैं जबकि आप शायद मात्र अपने झुकाव और आवेगों को जी रहे हों। नीति वचन 16:25। हमारी भावनाओं का बाइबल की शिक्षाओं से तारतम्य में होना जरूरी है। यह निष्कर्ष निकाल लेना कि परमेश्वर हमें रास्ता दिखा रहा है सुरक्षित नहीं है जब तक कि सभी तीनों मार्गदर्शिका तारतम्य में ना हो। परमेश्वर की योजना को स्वीकार कर लेना। जंगल में जब शैतान यीशु को परीक्षा लेने आया, यीशु ने उसे बाइबल से उत्तर दिया। यीशु शैतान को जवाब दिया, इसमें यह लिखा है। मत्ती 4:1-11 में पाते हैं। यीशु के जीवन से हम एक शक्तिशाली सबक सीख सकते हैं। वो सबक है पिता की इच्छा के समक्ष समर्पण। गतसमनी के तीव्र दुख के मध्यम भी उन्होंने कराहते हुए पुकारा था, मेरे पिता, अगर संभव हो तो यह प्याला मुझसे ले लिया जाए, जैसा मैं चाहूं वह नहीं बल्कि जैसा तुम चाहो। मत्ती 26:39। 3 वर्ष की उनकी सेवा के बाद पिता की योजना के अनुसार दिन व दिन जीवन जीते हुए मरते समय मसीह के शब्द थे पूरा हुआ। यूहन्ना 19:30। यीशु असल में कह रहे थे, मेरा परमेश्वर नियोजित जीवन अब पूरा हो गया और परिपूर्ण हो गया है। जैसे ही आप परमेश्वर के वचन, ईश्वर प्रदत्त परिस्थितियों और प्रत्यक्ष मन प्रभावों के माध्यम से परमेश्वर की सुसंगत आवाज सुनना शुरू करते हैं, आप उसके झुकाए मार्ग पर पूरे हृदय से चलना स्वीकार कर सकते हैं। आप भी परमेश्वर नियोजित और परमेश्वर निर्देशित जीवन का आनंद उठाना जान सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरी उपासना करते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और पिता हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। तू हमारा सृष्टि करता है, तू हमारा मार्गदर्शक है, हमारा जीवन तेरे हाथों में सौंपते हैं, हम सबों को, मेरे हरेक श्रोताओं को भी तू अगुवाई कर और आशीषित कर, और हमें तेरे राज के लिए तैयार कर पिता। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर, आमीन।
लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833221 पर संपर्क करें, या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindisamc@sudadvent.org।
मैं हूं गौरव चौहान,
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।